संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है आज के गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, जो कलयुग के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस या जन्म दिवस है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार का उद्धार के लिए परंपरागत ये ज्ञान दिया है जिसके द्वारा इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। चार संप्रदाय भगवान ने शिवजी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और चतुष्कुमार, इन सबको दिया ज्ञान। और ब्रह्मा जी के संप्रदाय में साक्षात वही भगवान श्री कृष्ण फिर से अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने युग धर्म का प्रचार किया। वृंदावनदास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की है, वो कहते हैं कि भगवान के कार्यकलापों को जानना बहुत ही मुश्किल है। इदम तुते गुह्यतमम, ये बहुत गुह्य ज्ञान है और इसे जान पाना बहुत मुश्किल है जब तक भगवान की कृपा नहीं हो। हम बद्ध जीव तो दूर की बात, साक्षात ब्रह्मा जी जो सृष्टि में पहले व्यक्ति थे, उनको भी मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये ज्ञान नहीं था जब तक भगवान उनके हृदय में ये ज्ञान स्फुरित नहीं किया। तो अगर इस पूरे भौतिक सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी इस सृष्टि में पहले सृजन हुए व्यक्ति, अगर वो खुद उनकी परिस्थिति ऐसी है तो हम क्या जाने। पर जब भगवान की कृपा होती है तब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं अवतरित होता हूं। संभवामि युगे युगे, हर युग में। तो कलयुग का कौन सा अवतार? परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति गण है उनका विनाश, और धर्म संस्थापनार्थाय। तो कलयुग के अवतार कौन है और उनका धर्म स्थापन क्या है, यह जानना है। तो इसका वर्णन वृंदावनदास ठाकुर इस सुंदर ग्रंथ में, चैतन्य भागवत में, वैदिक ग्रंथों के आधार अनुसार ये स्थापित करते हैं कि किस प्रकार श्री चैतन्य प्रभु महाप्रभु, जिनका आविर्भाव दिवस आज हम मना रहे हैं, और जो गौड़ीय वैष्णव उनके अनुयायी हैं, उनके लिए आज का दिन हमारे लिए नया साल है, इनका आविर्भाव दिवस। तो शास्त्र के आधार पर वो बताते हैं कि किस प्रकार वो ये युगावतार हैं और उन्होंने जो स्थापन किया है वो तरीका वो क्या है। इस कलयुग में असुरों को मार तो नहीं सकते, क्योंकि सबके सब असुर हैं, कोई भगवान पे विश्वास नहीं करता, सबके सब नास्तिक है प्रायशः। और जो थोड़ा बहुत धार्मिक है उनको ये नहीं मालूम कि धर्म असली में है क्या। परित्राणाय साधु नाम, तो कलयुग में असुर और देवता दोनों हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। आसुरिक प्रवृत्ति हमारे हृदय में है, दैवी प्रकृति भी हमारे हृदय में है, और धर्म क्या है हम जानते नहीं। पर श्री चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए तरीके को अगर हम अपनाएं तो यहां तीन चीज होता है। एक, परित्राणाय साधु नाम, हमारे अंदर वो जो साधु वृत्ति है, सब वृत्ति है हमारे अंदर, उसका वर्धन होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। विनाशाय च दुष्कृताम, और वो दुष्ट प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह के कारण उत्पन्न होने वाले विचार, ये सब धीरे धीरे जो बहुत शक्तिशाली हैं, जिनको हम ना नहीं कह सकते, जब वो उभरते हैं उसको हम धीरे धीरे दमन कर सकते हैं। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म क्या है अधर्म क्या है इसको हम जान पाते हैं। और यह तरीका है संकीर्तन, संग में आकर हरि कीर्तन करना, भगवान के नाम कीर्तन करना। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, धर्म परिभाव है या खने जखने, अधर्मेर प्रबलता बाड़े दिने दिने। जब धर्म की धर्म का परिभाव होते जाता है, धीरे धीरे घटते जाता है जहां भी और जहां भी, और अधर्म की प्रबलता बढ़ती जाती है दिन ब दिन। साधु जन रक्षा दुष्ट विनाश कारणे, ब्रह्मादि प्रभुर पाए करे विज्ञापने। और तब भगवान उस जगह पे अवतरित होते हैं। तबे प्रभु युग धर्म स्थापन करिते, सांगोपांग अवतीर्ण होये पृथ्वी ते। और तब जब युग धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान अपने पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं, जैसे कल हम बता रहे थे, जब एक कोई बड़ा आदमी, समझ लीजिए कोई प्रधानमंत्री, अगर कोल्हापुर आ रहा है, कोई राज्य में प्रवेश करता है, कोई नगर में आ रहा है, वो ऐसे ही किसी कारणवश कोई एक बड़ा कार्यक्रम के लिए, तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति आने से पहले 50 गाड़ियां आती हैं, फिर वो व्यक्ति आता है उसके साथ साथ और 10 गाड़ी आती है, और वो जाने के बाद और 50 गाड़ी जाते। इस तरह से अगर एक छोटे देश का जो प्रधानमंत्री है, मुख्य है, पंत प्रधान, अगर वो आते वक्त इतने लोग आते साथ में, पहले आगे साथ में, तो फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जब भगवान आने वाले हैं, तो उनकी तैयारी करने के लिए उनके भक्त, उनके माता पिता इत्यादि के रूप में अवतरित होते हैं अलग अलग जगह पर। फिर भगवान खुद आते हैं अपने पार्षदों के साथ, बंधु सखाओं के साथ, और लीला करने के हेतु, और तत्पश्चात उनके बहुत सारे अनुयायी भी उनके बाद एक 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 करके आते हैं, जो उनके बताए हुए मार्ग को पूरे विश्व में फैलाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से कलियुगे धर्म है हरि संकीर्तन, एतदर्थे अवतीर्ण श्री सची नंदन। तो कलियुग में जो धर्म है हरि संकीर्तन, भगवान हरि का संग में आकर कीर्तन करना, ये युग धर्म है। और जहां ये होता है, जहां श्रद्धालु भक्तगण एकत्रित होकर हरि का नाम लेते हैं, वहां ये तीन चीज निश्चित होने वाला है। आसुरिक प्रवृत्ति घटती जाती है, दैवी प्रकृति बढ़ती है, धर्म क्या है अधर्म क्या है समझ में आ जाता है। यही कहे भागवत सर्वतत्व सार, कीर्तन निर्मित गौर चंद्र अवतार। यही कहे भागवत सर्वतत्व सार, भागवत जो है ग्रंथों में सबसे प्रधान है, ग्रंथराज, सारे वैदिक ग्रंथों का परम ग्रंथ है भागवत, और इस भागवत में सारे तत्वों का निर्णय हुआ है। और वहां कीर्तन निमित्त गौरचंद्र अवतार, वहां बताया गया है, भागवत में वर्णन है, 5000 साल पहले जो वेद व्यास जी ने रचा था उसमें वर्णन है कि किस प्रकार कलयुग में युग संध्या के समय श्री चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र अवतरित होंगे। वो 11वें स्कंद में बताया गया है। इसके ऊपर थोड़ा विस्तृत रूप से कल चर्चा करेंगे। और वहां वर्णन है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। भगवान का रूप कैसा होगा, कहां जन्म लेंगे, किस प्रकार की कार्यकलाप करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति हरेक गली में पैदा हो जाता है कहता है कि मैं अवतार हूं, ऐसे अवतार नहीं। शास्त्रों में वर्णन है कौन वो अवतार होगा, कहां होगा, क्या कार्य करेगा। तो वर्णन है कलयुग का अवतार का, युगावतार, जो युग धर्म का प्रचार करेगा। कृष्ण वर्णम, भगवान से कृष्ण का हमेशा वो गुणगान करेगा। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णयति। त्विषा अकृष्णम, पर उनका जो अंग होगा वो अकृष्णम, कृष्ण के समान सांवला वर्ण का नहीं होगा, गौर वर्ण का होगा। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और अंग उपअंग अस्त्र पार्षदम, और वो अपने अस्त्र ले आएंगे। आप देखेंगे विष्णु के हाथ में चार है, शंख चक्र गदा पद्म। गदा और चक्र जो है वो विनाशाय सदस्कताम, शंख और पद्म जो है वो परिप्राणाय साधु नाम। तो कलयुग में जब भगवान अवतार लेंगे तो शंख चक्र गदा पद्म लेके नहीं आएंगे। उस समय उनके अस्त्र क्या है, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, उनके पार्षद आएंगे। अभी आपने देखा सुंदर अभिषेक हुआ, पांच लोग खड़े थे, अभिषेक करने वाले नहीं, टेबल के ऊपर पंचतत्व, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद अपने भक्त वृंद के साथ आएंगे। और उनका अस्त्र क्या होगा, उनका अस्त्र होगा उनकी सुंदरता। बहुत सुंदर अंग, जो भी उनका दर्शन करता है मोहित हो जाता था, प्रेम से एकदम बिहुल आ जाता था। और दूसरा है संग में आकर वो कीर्तन करेंगे, अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन, यही उनका अस्त्र है। असुरों को मारेंगे नहीं, असुरों का प्रवृत्ति निकाल देंगे और दैवी प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से भागवत में इसका प्रतिपादन हुआ है। कलियुगे युग धर्म हरि कीर्त हरि संकीर्तन सब प्रतिष्ठामक चैतन्य निरूपण, जो हरिनाम संकीर्तन है उसका उन्होंने निरूपण किया, उसको उन्होंने स्थापित किया। बहुत सारे श्लोक हैं वेदों में जो ये प्रतिपादन करते हैं, मतलब दिखाते हैं, निर्णय करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं इस कलियुग के अवतार हैं। कलियुगे संकीर्तन धर्म पालिवारे अवतीर्ण होइला प्रभु सर्व परिकरे। कलियुग में संकीर्तन प्रचार करने के लिए अपने सारे परिकरों के साथ, अपने पार्षदों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। प्रभुर आज्ञाए आगे सर्व परिकर जन्म लभी लेना सबे मनुष्य भीतर। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार होने को आया, समय आया, उससे कुछ साल पहले प्रभुर आज्ञाए आगे सर्व परिकर, महाप्रभु के आने से पहले उनके जितने पार्षद थे, उनके माता पिता गुरु परम गुरु इत्यादि, वो लोग जन्मे लोभी लेना सबे मनुष्य भीतर। जैसे प्रभु रामचंद्र की लीला में भी हम देखते हैं, जब ब्रह्मा जी गए और प्रार्थना किया विष्णु से, विष्णु ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, और सारे देवताओं को कहा आप लोग भी अलग अलग वानरों में और अलग अलग परिवार में आप लोग जन्म लीजिए और मेरी लीला में आप मुझे मदद कीजिए। तो वायुपुत्र हनुमान, नील, नल, सुग्रीव, वाली, इंद्र इत्यादि सारे जो देवतागण हैं, उन्होंने वानरों के द्वारा इतने सारे वानर सेना उत्पन्न की, अंगद जांबवान इत्यादि। तो इस तरह से हरेक अवतार से पहले उनके पार्षद जो हैं अलग अलग परिवार में जन्म लेते हैं। की अनंत की शिवा विरिंची ऋषिगण यत अवतीर्ण पर शोध आप्तगण। अनंत देव भी जन्म लिए, शिव जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, ऋषिगण, नारद आदि मुनिगण ये भी अलग अलग रूप में अवतरित हुए। हर एक वर्णन है कि कौन कौन क्या था, किस प्रकार महाविष्णु जो है अनंत शिवजी आदि सदाशिव वो आए अद्वैताचार्य के रूप में, बलराम नित्यानंद के रूप में, इस तरह से नारद मुनि श्रीवास ठाकुर के रूप में, अद्वैताचार्य शिवजी या आदिशेष सदाशिव, तो इस तरह से सारे पार्षद अलग अलग जगह जन्म ले रहे थे। भागवत रूपे जन्म होइला सबार, कृष्ण से जाने ना यार अंश जन्म यार। पर भगवान की योग माया के कारण किसी को नहीं मालूम था कि वो कौन थे और सामने वाला कौन है दूसरे पार्षद। उनको लग रहा था कि वे सब मामूली हैं, हम भी मामूली हैं, ये भगवान की योग माया है। जैसे यशोदा माई समझती है कि ये कन्ना काना जो है मेरा बालक है, इसको खाना नहीं खिलाऊंगी तो बेचारा तकलीफ उसको हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार कृष्ण लीला में भी अलग अलग देवतागण आए, इसी तरह से इस अवतार में भी हुआ। कार जन्म नवद्वीपे कार चटी ग्रामे कार राढ़े ओढ़ देशे श्रीहटे पश्चिमे। अलग अलग देशों में नवद्वीप जो आज बंगाल में है वहां श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। कार जन्म नवद्वीपे, गंगा तट पर नवद्वीप में बहुत सारे पार्षद जन्म लिए। कारो चाटीग्राम में, चाटीग्राम जो है वो बांग्लादेश में है। कारो राढ़ देश जो है इसकी जो गंगा नदी है उसके पश्चिम भाग में आते हैं। फिर ओढ़ देश जिसको आज उत्कल या उड़ीसा कहते हैं, और फिर श्रीहट जो बिहार के बाद आते वहां, और इस तरह से अलग अलग जगह पर बहुत सारे भगवान के पार्षद जन्म लिए। नाना स्थाने अवतीर्ण होइला भक्तगण, नवद्वीपे आसी होइला सबर मिलन। अलग अलग जगह में जन्म लिए पर ये जानते हुए भगवान ने ऐसा इंतजाम किया कि सबके सब नवद्वीप में आए, ये जानते हुए कि भगवान वहां जन्म लेने वाले हैं। सर्व वैष्णवेर जन्म नवद्वीपे धाम, कौन महाप्रिया दासेर जन्म होए स्थान अन्य स्थान। कुछ लोग नवद्वीप में लिए और कुछ लोग अलग अलग जगह में लिए। श्रीवास पंडित आर श्रीराम पंडित श्री चंद्र शेखर देव त्रैलोक्य पूजित। भवरोग वैद्य श्री मुरारी नाम यार, श्रीहट्ट एहारे वैष्णवेर अवतार। अलग अलग भाग पार्षदों का नाम वर्णन है कहां कहां वो जन्म लिए। पर यहां एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, वैष्णवेरो अवतार। ये क्यों लिखा गया है वैष्णवेरो अवतार, भगवान का अवतार होता है, वैष्णव तो जीव है, फिर वैष्णव का अवतार कैसे? ये बताने के लिए कि ये लोग भगवान के नित्य पार्षद हैं, ये हम और आप जैसे बद्ध जीव नहीं है, इसीलिए इस शब्द को उपयोग किया गया है कि भगवान जब आते हैं तो उनके नित्य पार्षद भगवत धाम से उनके साथ आते हैं लीला में भाग लेने के लिए। इस तरह से सारे भक्तों का नाम वर्णन है और तत्पश्चात हां कृपा सिंधु भक्ति दाता श्री वैष्णव धाम, राढ़ अवतीर्ण होइला नित्यानंद राम। एक चक्र नाम का गांव है, आज भी आप जाओगे राढ़ देश में गंगा गीज के पश्चिम में, वहां वो एक चक्र नाम का गांव है जहां नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हुए। क्यों भगवान ने अपने पार्षदों को अलग अलग जगह जन्म दिलाया, एक ही जगह क्यों इकट्ठा करके नहीं किया, कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो उसका वर्णन वहां बताते हैं, गंगा तीर पुण्य स्थान सकल थाकिते वैष्णवेर जन्माय केनो शोच्य देशे, आपन होइला अवतीर्ण गंगा तीरे संगेर पार्षदे केनो जन्माय दूरे। बोले ऐसा क्यों हुआ कि खुद भगवान गंगा के तट पर जन्म लिए पर अपने पार्षदों को दूर दूर जगह में डाले। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं ये देशे गंगा हरि नाम विवर्जित, ये देशे पांडव नाही गेला कदाचित, से सब जिवेरे कृष्ण वात्सल्य होइया, महाभक्त सभा जन्माइया आज्ञा दिया। जहां भी भगवान के वैष्णव भक्त जन्म लेते हैं वो जगह कम से कम 1000 मील पवित्र स्थान बन जाता है, वो देश और वो कुल का उद्धार हो जाता है। हनुमान जी का जन्म कहां हुआ आपको मालूम है? प्रभु रामचंद्र का तो अयोध्या में हुआ, हम्पी इधर दक्षिण भारत में, और वहां हजारों लाखों लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, हनुमान जी का जन्म स्थान। इस तरह से भगवान आते हैं पर अपने पार्षदों को ऐसा, जहां गंगा नहीं बहती, जहां हरिनाम नहीं है, ऐसे जगह में उनको जानबूझ के डालते हैं ताकि वो जगह और वो कुल का भी उद्धार हो जाता है। जैसे जब प्रहलाद महाराज, भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को पूछा, मांगो बेटे तूने मेरे लिए इतना सहन किया, मांगो कुछ वरदान। प्रहलाद महाराज, एक भक्त जो है उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, उसने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका स्मरण होते रहे, आपकी सेवा करते रहूं बस। बोले नहीं नहीं, कुछ तो मांगो, मेरा दर्शन निष्फल नहीं होना चाहिए, कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे पिता मेरे से प्रेम करते थे पर थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा असुर भाव था उनका, तो कृपया उनका थोड़ा आप उद्धार कर दीजिए। तो भगवान ने कहा, प्रहलाद तेरे शुद्ध इस तरह भक्ति करने के कारण न केवल तेरे पिता बल्कि तेरी पीढ़ियां 21 पीढ़ियां इधर उधर सब के सब उद्धार हो गए सिर्फ तुम्हारे भक्त बनने से। एक तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी लिखते हैं हजारों पीढ़ियां उनकी उद्धार हो जाती है, आगे पीछे और आजू बाजू सब। देखिए ये उनकी महिमा है, और जिस स्थान में वो जन्म लिए वो स्थान के 1000 मील तक आसपास वो पवित्र स्थान हो जाता है। जो हरि भक्त वैष्णव जहां भी जन्म लेते हैं वो जगह एक पवित्र स्थान हो जाता है, वहां के लोग निश्चित रूप से बड़ा सौभाग्यशाली हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कारणवश उन्होंने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा संसार तारिते श्री चैतन्य अवतार आपने श्री मुखे करी याचना अंगीकार। और इस तरह से वो देश में और वो कुल में जहां कोई भी मतलब हरि कथा का गंध भी नहीं है, ऐसे जगह में वहां अवतीर्ण कराए। ये स्थाने वैष्णव गण करे ना विजय, से स्थाने होए अति पुण्य तीर्थमय। जहां भी वो जन्म लेते वो जगह पुण्य तीर्थ हो जाता है। अतएव सर्वदेशे निद भक्तगण अवतीर्ण कैला श्री चैतन्य नारायण। और इसीलिए अपने भक्तगण को अलग अलग जगह में वो डाले। नाना स्थाने अवतीर्ण होइला भक्तगण नवद्वीपे आसी सवार होइला मिलन। अलग अलग जगह में लिए जन्म लिए और तत्पश्चात सब लोग नवद्वीप जो आज बंगाल में है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है मायापुर, वहां सब लोगों का मिलन हुआ। नवद्वीपे होइबा प्रभुर अवतार अतएव नवद्वीप मिलन सवार। क्योंकि सबको मालूम था कि यहां प्रभु अवतार लेने वाले हैं। नवद्वीप हेन ग्राम त्रिभुवन नाय याही अवतीर्ण होइला चैतन्य गोसाई। बोले तीनों लोकों में 14 लोक जो हैं उसमें 3 लोक हैं जहां बद्ध जीव आते हैं, खास करके भौतिक जीव, भूर भुव और स्वर्ग लोक। भूर भुव स्व गायत्री में करते ना हम लोग, तो ये जो है मध्यम लोक हैं ये। इन लोकों में जम्बूद्वीप जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और जम्बू द्वीप में भारतवर्ष जो है उसको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और भारतवर्ष में खास करके वृंदावन धाम और नवद्वीप धाम इनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन धाम क्योंकि वहां ब्रजमंडल जहां श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए और वो माधुर्य धाम है, पर वही श्री कृष्ण जब आस्वादन करने नहीं बांटने की भावना से आते हैं वो है औदार्य धाम और वो है नवद्वीप धाम। तो नवद्वीप धाम में और वृंदावन धाम में कोई भी अंतर नहीं है, ब्रजमंडल और गौड़ मंडल इसमें कोई अंतर नहीं है। और जो ये समझ जाता है श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार होए ब्रजभूमे वास, अगर आप ये जान जाओगे कि गौड़ मंडल भूमि जो है वो चिंतामणि धाम है, उसके लिए ब्रजभूमि भास निश्चित है। तो इस तरह से ऐसे पवित्र स्थान में योगपीठ, योगपीठ मतलब जब भगवान अवतरित होते हैं जिस स्थान पर वो पहले प्रवेश स्पर्श करते हैं इस पृथ्वी को, उसको कहते हैं योगपीठ। योग मतलब जुड़ना, जहां भगवान अवतीर्ण होने के बाद पहले पृथ्वी को स्पर्श किए वो जगह है योगपीठ, वो है मायापुर धाम में। नवद्वीप में भी जो अंतर द्वीप बीच का द्वीप है वो बहुत ही पवित्र है। फिर उस समय भगवान के अवतीर्ण लेने से पहले उस जगह की स्थिति कैसे थी उसका वर्णन सुनिए। नवद्वीपे संपत्ति के वर्णिवारे पारे एक गंगा घाटे लक्ष लोक स्नान करे। बोले नवद्वीप इतना प्रसिद्ध था उस समय, वो पूरे विद्या, क्या बोलते हैं, विद्यानगरी, पूरे विश्व का विद्यानगरी था वो उस समय नवद्वीप। और हजारों हजारों लोग मिथिला से वाराणसी से बड़े बड़े पंडितगण नवद्वीप आया करते थे वहां निवास करने के लिए और विद्या पाने के लिए। किस लिए? क्योंकि बहुत प्रसिद्ध था वो स्थान, इतना प्रसिद्ध था और उनकी जनसंख्या इतनी थी, खचा खच भरा हुआ था। कैसे? बोलते हैं एक गंगा घाटे लक्ष लोक स्नान करे। एक एक गंगा घाट में, ऑफ कोर्स वहां जल नहीं था, ऐसा टैप नहीं था, मतलब क्या बोलते हैं, नल नहीं था, सब लोग गंगा में स्नान किया करते थे। एक एक घाट में लाख लाख लोग स्नान करते थे, ऐसा भरा हुआ था नवद्वीप उस समय। त्रिविध वयसे एक जाति लक्ष लक्ष सरस्वती प्रसादे सबे महादक्ष। ऐसा था त्रिविध वयसे, तीन प्रकार का वयस होता है, एक बच्चे, दूसरे नौजवान और तीसरे बूढ़े। त्रिविध वयसे एक जाति लक्ष लक्ष, हर एक लाखों बच्चे लाखों नौजवान और लाखों बूढ़े थे। सरस्वती प्रसादे सबई महादक्षा, और सरस्वती जी की ऐसी कृपा थी नवद्वीप में कि एक से बढ़कर एक विद्वान होता था, एक से बढ़कर एक, सब शास्त्रों को, जैसे हम लोग सिनेमा का गाना गाते हैं, अंताक्षरी करते वक्त मैंने देखा है, ट्रेन में जा रहा था एक बार, अंताक्षरी, और अरे अरे क्या मालूम, पूरा फोलियो अंदर है उनके पास, क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे जो भी अक्षर बोलो उसमें 10 गाना चालू घंटों घंटों भर। इस तरह से यहां के बच्चे बच्चे, बूढ़े तो दूर नौजवान तो दूर, बच्चे बच्चे भी शास्त्र का उच्चारण ऐसा करते थे, ऐसा हम लोग पानी पीते हैं वैसा शास्त्र बोलते थे वो लोग। सभी महा अध्यापक करी गर्व धरे बालक एवं भट्टाचार्य समा लक्ष्य करे। एक एक व्यक्ति भी इतना बड़ा, अपने आप को भट्टाचार्य मानता था, इतना इतना गर्व था उनको कि छोटा बच्चा भी अपने शिक्षक को बोलता था, कभी कभी उसके साथ वाद विवाद होता था और वो हरा देता था उसको और बोलता था तेरे को नहीं मालूम है, मेरे को मालूम ये शास्त्र। एक एक बच्चे भी ऐसे दक्ष थे कि गुरु के साथ ही उनका वाद विवाद होता था। नाना देश हैते लोक नवद्वीपे आय नवद्वीपे पड़ीते से विद्या रस पाए। नाना देश अलग अलग देशों से मिथिला से वाराणसी से अलग अलग देशों से लोग वहां आते थे। मैं कैम्ब्रिज गया था, हमारे एक भक्त वहां रहते हैं लंदन में, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज आपने सुना होगा। जो कैम्ब्रिज शहर है वो पूरा होल सिटी इज जस्ट ए यूनिवर्सिटी, पूरा बड़ा यूनिवर्सिटी है वहां। और वहां मैंने देखा हर विश्व के अलग अलग जगह से लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि कैम्ब्रिज बड़ा फेमस है वो, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज हार्वर्ड आजकल के नवद्वीप है वो। सबके सब बड़े बड़े एक से बढ़कर एक विद्वान, बड़ी बड़ी बात है। एक एक पेड़ के नीचे एक एक लोग बैठे रहते, चर्चा करते रहते हैं फिजिक्स लॉ ये ऐसा। न्यूटन के नाक के ऊपर जहां एप्पल गिरा था वो पेड़ अभी भी है, वो भी कैम्ब्रिज का था वो। तो वो बता रहे थे, बोले ये पेड़ है ना, इसके नीचे न्यूटन सोया था, उसके नाक के ऊपर गिरा हुआ सफरचंद, तो उसने ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी उसने बनाया, गुरुत्वाकर्षण। तो इस तरह से वो बता रहे थे, ऐसे बड़े बड़े लोग यहां से, ये देश से सब देश से लोग आए वहां। इस तरह से नवद्वीप वहां की विद्यानगरी थी उस समय पूरे विश्व में। अतएव पुड़ुयार नाही समुच्चय, लक्ष कोटि अध्यापक नहीं को निश्चय। कोई भी बता नहीं सकता था कि कितने छात्र हैं और कितने शिक्षक हैं इधर। लाखों लाखों छात्र, लाखों लाखों शिक्षक, ऐसी नगरी थी वो। ये हुई सरस्वती जी की कृपा उस जगह के ऊपर महाप्रभु के आने से पहले। अब सुनिए लक्ष्मी जी की कृपा कैसी थी। रमा दृष्टि पाते सर्वलोक सुखे वशे, व्यर्थ काल याय मात्रा व्यवहार रसे। लक्ष्मी जी की कृपा से हर एक व्यक्ति बहुत सुखी था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर हर एक व्यक्ति भौतिक कार्यों में अपना समय गंवाता था। विद्वत्ता की कमी नहीं थी, ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, कमी थी भक्ति की। कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार, प्रथम करीते होइला भविष्य आचार। भगवान श्री कृष्ण प्रभु रामचंद्र कृष्ण बलराम की भक्ति शून्य था संसार, पूरे संसार में। प्रथम कलिले होइला भविष्य आचार, कलयुग के अंत में जो लक्षण बताया गया है, किस प्रकार से लोग एकदम क्या बोलते हैं नास्तिक हो जाएंगे, ऐसी नास्तिक स्थिति उस समय नवद्वीप में हो गई थी दुर्भाग्यवश। धर्म कर्म लोके सब यही मात्रा जाने, मंगल चंडीर गीते करे जागरणे। लोगों की जो थोड़े वो तथाकथित धार्मिक लोग थे उनका एक ही काम था, पूरा रात भर जागरण करते थे और मंगल चंडी की पूजा करते थे। मंगल चंडी मतलब देवी, दुर्गा देवी और उनके अलग अलग देवी, और उनका तांत्रिक तरीके से, तमोगुणी तांत्रिक तरीके से उनकी पूजा, रात भर लोग जागा करते थे। दंभ करी विष हरे पूजे को न जान, पुतली कराए के हो दिया बहुधन। और कुछ लोगों ने विषहरी जो सांप की देवी होती है उसको बड़े धूमधाम से पूजा करते थे, और कुछ लोग ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे देवी देवता ऐसा इन लोगों की पूजा किया करते थे और बहुत धन उस पर डाला करते थे। धन नष्ट करे पुत्र कन्यार विवाह, हे मत जगते रह व्यर्थ काल आय। कुछ लोगों ने अपने पुत्र और पुत्रियों की विवाह के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया करते थे, और इस तरह से अपने मनुष्य जीवन का बर्बाद कर रहे थे वो लोग। ये हो भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब, तहार न जाने सब ग्रंथ अनुभव। यहां तक कि कुछ लोग ऐसा था कि एक आदमी अपनी पुत्री का विवाह कराता था और समझ लीजिए 1 करोड़ खर्चा किया उसने, फिर देखता था कि बगल घर वाला उसने 1.5 करोड़ खर्चा किया अपना, मतलब देखा तुमने इतना किया मैंने इतना किया। उसकी थी एक ही लड़की, वो तो विवाह हो गया, अब क्या करेगा वो, उसको दिखाना है कि मैं तेरे से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं। तो 2 गुड़िया लेता था लड़का लड़की का और वो विवाह कराता था उनका और 2 करोड़ खर्चा करता था। कुछ तो करना, कुछ नहीं तो 2 बंदर को लेके, बंदर बंदरी उनका विवाह, एक कुत्ता और एक कुत्ती दोनों का बस विवाह, एक क्या बोलते कैट बिल्ली, एक 2 बिल्ली को लेके उनका विवाह करा। पैसा खर्च करना, दिखाना अहंकार से, मेरा पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है। इस तरह से लोग अपना जो धन का जो मत था वो दिखाने में लगे हुए थे, या विद्वान लोग जो थे वो अपनी विद्वत्ता दिखाने में लगे हुए थे, कौन किसको हराएगा, कौन अपने गुरु को हराएगा और कौन अपने आप को विद्वान बताएगा। तो इस तरह से कोई कमी नहीं थी, पर कमी थी भक्ति की। इवा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्रा सब तहारो न जाने सब ग्रंथिर अनुभव। बड़े बड़े मिश्रा, चक्रवर्ती और भट्टाचार्य, भट्टाचार्य मतलब जो शिक्षक होते हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग, भट्टाचार्य फिर चक्रवर्ती, बड़ा पूजा पाठ कराने वाले, और मिश्रा बड़े बड़े विद्वान, इनका टाइटल होता था सार्वभौम भट्टाचार्य। तो इस तरह से बड़े बड़े आजकल के प्रोफेसर कहेंगे तो ऐसा है, प्रोफेसर सो एंड सो, प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर चक्रवर्ती, प्रोफेसर भट्टाचार्य, ऐसे बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों के ऊपर प्रवचन दिया करते थे, पर किसी को शास्त्र का मर्म नहीं मालूम था, शास्त्रों का सार क्या है किसी को नहीं मालूम था, शास्त्र में मद मत करते हैं। हमारे एक सन्यासी भक्त हैं, वो पाश्चात्य देश में ये भगवद गीता का प्रचार करने के लिए एक प्रोफेसर के पास गए, और इस प्रोफेसर ने पीएचडी किया है रूप गोस्वामी के एक पुस्तक के ऊपर, उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु हम लोग पढ़ते हैं उसका, उसके बाद का जो पुस्तक है वो है उज्ज्वल नीलमणि, उसने उसके ऊपर पीएचडी किया है। और उन्होंने कहा इस भक्त को जो भगवत गीता देने आया था, बोले वो भगवत गीता मैं तो उज्ज्वल नीलमणि पढ़ा, ये तो एबीसीडी सिखा रहे, मैं तो पीएचडी किया हूं। उन्होंने कहा तुम शाम को आओ, हम लोग चर्चा करेंगे उसके ऊपर, उज्ज्वल नीलमणि के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भक्त गए हमारे शाम को उनके घर में, वो लेटे हुए थे ऐसे निर्वस्त्र अवस्था में, वो लैंप लगाए हुए, थोड़ा ठंडी में गर्म करने के लिए लैंप लगाते, पूरा निर्वस्त्र ऐसा लेटे हुआ था, एक हाथ में दारू का एकदम एक पैग और दूसरे हाथ में सिगरेट था, और बोला बैठो चलो अभी चर्चा करेंगे उज्ज्वल नीलमणि के ऊपर। तो इसने कहा दंडवत प्रणाम, ठीक है आप बड़े विद्वान हो, मैं जाता हूं। तो क्या फायदा ऐसे बड़े बड़े विद्वत्ता का कि उसको उतार नहीं रहे जीवन में, अपने जीवन में उतारने, शुद्धता नहीं है केवल विद्वत्ता है। तो इस तरह से ये इतने बड़े बड़े भट्टाचार्य थे, पर भगवान कहते हैं गीता में वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, अंततः सारे वेदों का मर्म है भगवान को जानना, हम कौन है और भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है इसको जानना, अगर ये नहीं जाने तो क्या फायदा। शास्त्र पढ़िया सबे एक कर्म करे, श्रोतार सहिते यम पाशे डूबे मरे। बड़े कटु शब्द लिखते हैं, बोले शास्त्र पढ़ू यार सबे एक कर्म करे, जो शास्त्र में पढ़े लिखे लोग थे इसी कर्मों में लगे हुए थे, और इनका क्या बोलते हैं भविष्य क्या है, यम पाशे डूबी मरे। अगर आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे यमराज यमदूतों को अजामिल के संदर्भ में, जब यमराज अजामिल को लेने जाते हैं और अजामिल को नहीं पकड़ पाते, फिर वापस आते हैं यमराज के पास, यमराज बोलते हैं किसको मेरे पास लाना और किसको मेरे पास मत लाना, बोले जो भी हरि का नाम ले रहा है, हरि कीर्तन कर रहा है, हरि की सेवा कर रहा है, हरि की शरणागत है, ऐसे व्यक्ति के पास भी मत जाना, गंध भी मत लेना, उधर 2 किलोमीटर दूर रहना। और जिसने कभी हरि का नाम नहीं लिया, जिसने अपने सर कभी हरि के सामने झुकाया नहीं, जिसने अपने कर्म में कभी हरि भक्ति नहीं की, बोले ऐसे लोगों को जरूर लाना, बोलना मत। वर्णन है भागवत में 6 स्कंद में। तो इस तरह से जो भगवान का स्मरण नहीं करता एक बार भी, एक जिसका सर एक बार भी भगवान के सामने झुकता नहीं है, और जो भगवान के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो नहीं कर रहे, उनको ले आना मेरे पास। तो इस तरह से नाभा खाने युग धर्म कृष्ण र कीर्तन दोष बिना गुणकार ना करे कथन। और एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, नाभा खाने युग धर्म कृष्ण र कीर्तन, अगर आप शास्त्र की चर्चा हो रही है कहीं भी, शास्त्र की चर्चा मतलब हरि कीर्तन होना ही है उधर, क्योंकि युग धर्म है कलयुग का, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में कहीं भी शास्त्र की चर्चा होती है तो हरि कीर्तन होना चाहिए, उसका निष्कर्ष वहां आना चाहिए। पर दुर्भाग्यवश लोग क्या कहते थे, दोष बिना गुणों कार्य ना करे कथन, किसी का गुण नहीं देखते थे, सिर्फ दोष देखते थे एक दूसरे का, ये ऐसा है वो ऐसा है ये ऐसा है। इसके तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, जैसे ही हम भगवान के गुणगान को छोड़ देते हैं और शास्त्र के जो नियम है उसको तुरंत छोड़ देते हैं, तुरंत हमारे अंदर अहंकार आ जाती है और हम ईर्ष्या से भर जाते हैं। और जब अहंकार आ जाता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और ईर्ष्या आ जाती है, ईर्ष्या के कारण केवल हमें दोष नजर आता है सब में, केवल हमें दोष नजर आएगा सब में, यानी हम सिर्फ दूसरों के दोष देखने में लगे हुए हैं, हमारे अंदर जो करोड़ों दोष है उसको हम दिखते ही नहीं है। इतना अहंकार के कारण हम समझते हैं केवल हम ही शुद्ध भक्त हैं इधर और सबके सब इधर दोषी है, इसके अंदर ये दोष है, इसके अंदर ये, इसके अंदर चार, इसके अंदर पांच। शिशुपाल के चेले बन जाते हैं हम लोग, कृष्ण के अंदर भी 100-100 दोष देखा उसने, भगवान श्री कृष्ण परमम पवित्रम, उनके अंदर भी दोषी दिखा उसको। ये क्यों? इसका मतलब यही है, बीमार हो गए, बीमार हो गए मतलब ये बीमारी स्थिति है, अहंकार के कारण ईर्ष्या के कारण केवल हम दोष देख रहे दूसरों में, दोष ही नजर आता है। चैतन्य महाप्रभु ने अमोघ को यही कहा, बोले तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा हृदय निर्मल होना चाहिए, तुम क्यों इतने दोषों से भरे हुए हो? अब उन्होंने स्पर्श द्वेष से भरे हुए, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने अमोघ के हृदय को स्पर्श किया और बोला, सुनो, हर बार जब तुम द्वेष के कारण किसी का दोष के बारे में देखते हो और कहते हो, तुम विष का पान कर रहे हो। बोले विष का पान कर रहे हो तुम, क्या विष का पान कर रहे हो? क्योंकि तुम अपना नाश की ओर बढ़ रहे हो, भक्ति की मृत्यु हो जाएगी हमारी। तो फिर क्या करना है इसके लिए? अभी तक तुमने बहुत विष पी लिया, ठीक है, जितना भी विष पिया कोई तकलीफ नहीं, अभी अमृत पियो। अमृत पीने से विष को वो काउंट्रैक्ट करता है। कृष्ण कथामृत, कृष्ण नामामृत, और जिस व्यक्ति का तूने दोष देखा, अब बहुत कोशिश कर उसमें से कुछ अच्छे गुण देखने के लिए और उसका गुणगान कर। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम और वैष्णव का गुणगान, ये तीन ऐसा अमृत है जो सारे जो ईर्ष्या और अहंकार का जो विष है हमारे हृदय में उसको धीरे धीरे नाश कर सकता है। दुर्भाग्यवश ये नहीं होने के कारण यहां के लोग केवल दोषी देखा करते थे। भगवान के सामने आएंगे, आंखें खोलो, कान खोलो, मुंह खोलो, अभी नहीं, कीर्तन के समय। आपने देखा होगा मंदिर के सामने एक ऐसा कछुआ रखता है, पुराने मंदिरों में मंदिर के सामने कछुआ रखते हैं और वो कछुआ जो है पैर हाथ और सर बाहर निकाला हुआ है। इसका मतलब है जब सत्संग में आते हो तो अपने आंखें फाड़ फाड़ के खोलो, अपने कान को अच्छी तरह से खोलो और अपने जिह्वा से हरिनाम लो, संकीर्तन करो, इंद्रियों को उपयोग करो, हाथ से सेवा करो, पैर से नाचो गाओ कुछ करो। और जब आप बाहर जाते हो तो सबको बंद करके रखो, गांधी जी के तीन बंदर जैसे, आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद। मुंह बंद का मतलब क्या? जो जरूरत नहीं है क्यों उसके बारे में कहना, क्या फायदा जहर पीने से। तो इस तरह से ऐसे लक्षण उनमें वो देख रहे थे। जब बद्ध जीव हमेशा भगवान के नाम और गुण का गुणगान करते हैं तब धीरे धीरे कली का प्रभाव है। कली का मतलब झगड़ा, और झगड़े के लिए कारण चाहिए, तो कली का जो प्रवृत्ति है वो शांत हो जाता है और धीरे धीरे हमारा जो कान है वो अधिकृत व्यक्तियों से सुनने में, इस तरह से वो कृष्ण के अलावा और कुछ विषय चर्चा नहीं करते। जीवासव विरक्त तपस्वी अभिमानी तासवार मुख न हिको हरि ध्वनि। बड़े बड़े विरक्त तपस्वी और अभिमानी लोग थे पर उनके मुख से भी हरि ध्वनि नहीं निकलता था। तपस्वी थे, वैरागी थे, पर शास्त्र कहता है आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, नाराधितो हरि यदि तपसा ततः किम। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की पर क्या फायदा हुआ तपस्या का, वो भी नाश हो गया, उसका पूरा वंश नाश हो गया। तपस्या अपने आप में ना हम वेदैर न तपसा, भगवान कहते हैं वेदों के पठन से न तपसा न दान न इज्जया, इन चीजों से मैं आकर्षित नहीं होता। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, केवल भक्ति से अर्जुन मैं जीता जा सकता हूं, नहीं तो नहीं। तो यहां तपस्वी थे, विरक्त वैरागी थे, पर दुर्भाग्यवश किसी के हृदय में भक्ति नहीं थी। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपको लग रहा है ये क्या है इतना कथा सुना रहे हैं, आप थोड़ा सोचिए, आज की परिस्थिति कोई भिन्न नहीं है। आज भी बड़े बड़े साधु हैं, आज भी बड़े बड़े विरक्त आत्मा हैं, आज भी बड़े बड़े तपस्वी हैं, पर उनको शास्त्र का मर्म क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, युग धर्म क्या है, पूछिए आप। भगवान कौन है, तुम कौन हो, तुम्हारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, उस रिश्ते को पुनर्स्थापन करने का एकमात्र तरीका क्या है। बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े पीएचडी हैं, विद्वान है, करोड़पति है, इन चीजों की आज भी कमी नहीं है, पर आज भी दुर्भाग्यवश प्रायशः बहुत ही कम लोग हैं जिनको पूर्ण रूप से यह ज्ञान है। तो यह मत सोचिए कि सिर्फ 5000 साल पहले था, तब आप जानेंगे आज के दिन की महिमा क्या है, क्यों आज का दिन इतना पवित्र है, कैसे आज का दिन का हम लोग पूरा लाभ उठा सकते हैं। यह कोई कथा नहीं है, यह नित्य लीला है, यह हमेशा होते आई है और होते रहेगी अगर हम ये बताए शास्त्र के बताए गए पथ को अपनाते नहीं। अति बड़ा सुकृति ये स्नान रस समाय गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चाराय। बहुत ही धार्मिक लोग, बहुत ही धार्मिक लोग दिन में एक बार नाम लेते थे भगवान का, स्नान करते वक्त, स्नान करते वक्त गंगा जल डाल के गोविंद 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 बस। आजकल वो भी नहीं, आज एक ही बार नाम लेते मरने के बाद, राम नाम सत्य है, वो भी क्या घर से वो स्मशान भूमि तक, राम नाम सत्य है, उस समय याद आता है क्या सत्य है, और जैसा स्मशान भूमि से वापस आए झूठे संसार में घुस जाते, क्या हो गया सत्य, वो सत्य वहीं रहने दो, हम मरने के बाद कोई बोलेंगे राम नाम सत्य है। मैं देखा है दक्षिण भारत में भी कोई मरता है ना गोविंदा 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 गोविंद, स्मशान तक कुछ नहीं, किसी और का नहीं, 33 करोड़ देवी देवता का नहीं, गोविंद 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 या राम नाम सत्य है। क्यों मृत्यु के बाद ये याद आता है, उसे पहले क्यों नहीं? ऐसी परिस्थिति थी उस समय भी। गीता भागवत ये हरे कृष्ण, गीता भागवत ये जनेते पड़िया, भक्ति रो व्याख्यान नहीं तहार जीवाया। कुछ लोग गीता और भागवत पे भी प्रवचन देते थे, बड़े बड़े विद्वान गीता और भागवत पे, पर भक्ति रो व्याख्यान नहीं तहार जिह्वाय। भक्ति का जो जो निष्कर्ष है शास्त्र का, भक्त्या तु अनन्या शक्य, भगवान गीता में कहते हैं केवल एक ही तरीके से तुम मुझे जान सकते हो अर्जुन, और वो है भक्ति। भगवान, भक्त और भक्ति, ये तीन चीज शाश्वत है और सब नश्वर है। तो भले गीता और भागवत एक शास्त्र में बताया गया है, पूरे महाभारत में दो ही चीज श्रेष्ठ है, एक भगवत गीता और दूसरा विष्णु सहस्रनाम। और भागवत इसमें केवल हरि का गुणगान, और गीता और भागवत अगर ये दो शास्त्र अगर अपने जीवन में हम अपना ले तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो कर महाराज भी कहते हैं गीता भागवत, ओ अब हम याद नहीं, हाँ गीता भागवत करिते श्रवण अखंड चिंतन विठोबाच। तो गीता भागवत पे होता था, आज भी हम देखते हैं भागवत सप्ताह होता है, मनोरंजन, अच्छा मनोरंजन, फर्स्ट क्लास। बट आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ हृदय में, क्या जीवन में परिवर्तन हुआ, क्या विचार में परिवर्तन हुआ, क्या रहन सहन में परिवर्तन हुआ, क्या आचार में परिवर्तन हुआ? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, क्या आसुरिक प्रवृत्ति कम हो रही है, क्या दैवी प्रकृति बढ़ रही है, क्या धर्म क्या है अधर्म क्या है मालूम हो रहा है? दुर्भाग्यवश नहीं होता, ये केवल मनोरंजन हो जाता है। इसके बाद भी नहीं समझ में आता है, सब सुनने के बाद भी। यही मत विष्णु माया मोहित संसार, देखी भक्त सब दुख भावे ना अपार। अब सुनिए वैष्णवों की दशा क्या थी वहां, हमें समझना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वहां के कुछ भक्त जो थे उनकी परिस्थिति क्या थी? यही मत विष्णु माया मोहित संसार, विष्णु माया से मोहित संसार में दुखी देखी भक्त सब दुख भावे ना अपार, बहुत दुख लगता था। यह वैष्णव का लक्षण है, पर दुख दुखी, उसको अपने दुख की कोई चिंता नहीं है, पर देख रहा है कि पूरी दुनिया बहुत दुखी है। आप बोलोगे क्या महाराज क्यों बोलते हो दुखी, सब सुखी है। कभी कभी छोटे बच्चे मैंने देखा है, हम लोग कभी कभी चौपाटी जाते हैं, हमारा मंदिर चौपाटी में ही है, गिरगांव अपना बंबई में, बच्चे के सामने वो ये गुब्बारे वाला आता है, बलून वाला, और टर्र करके ऐसा घुमाता है, फिर बलून दिखाता है आवाज के द्वारा, फिर कलर कलर बलून, इतना बड़ा बड़ा एकदम गुब्बारा फूंका, और जानबूझ के बच्चे के सामने टर्र करके घुमाता है और उसके आंख के सामने ऐसा हिलाता है, और बच्चा कान सब एकदम बम्बार्डमेंट, और हमको लगता है मतलब है पाइजे, मतलब एज पाइजे। मां बोलती है अरे वो तो खाना मैंने छोड़ी, क्या है सब फूट देने वाला है इसको, मत प्रर करता है वो प्लास्टिक का, टूट जाएगा तू घर जाते तक टूट जाएगा। और ये गुब्बारा अरे थोड़ा बस में कोई फोड़ फोड़ देगा ऐसा इधर उधर जाते वक्त, क्यों लेता है? नहीं नहीं, हाथ पैर मार के जबरदस्ती करके लेते, ठीक है ले क्या करेंगे। इस तरह से माया देवी हमारे सामने भी बड़े बड़े गुब्बारे लटका रही है। ये एडवर्टाइजमेंट वाले माया के द्वारा शक्ति उनको प्रदान, शक्ति प्रदान किया गया है, क्या सुंदर एडवर्टाइजमेंट, गाड़ी चलाते चलाते ती माला पाइजे इतना सुंदर, ये नहीं तो आपका जीवन बर्बाद, अरे ये गाड़ी नहीं आपके पास, ये मोबाइल नहीं, ये जींस नहीं, ब्रांडेड जीन, जीवन क्या है तुम्हारा, जीन के बिना क्या जीवन। इस तरह से कन्विंस, एकदम कन्विंस कर देते हैं और हमको लगता है हां तेज मतलब भाई, उसके बिना शून्यायतम जगत सर्वम। मेरा पूरा जगत शून्य हो गया, जीवन क्या है तुम्हारा। इस तरह से हम फंस जाते हैं, तो वो सोचते क्या थे कि मुने ए जीवा सब पालिवे उद्धारे, विषय सुखे थे सब माजिला संसारे। विषय सुख में लग गए हैं पर बहुत जल्दी थप्पड़ मिलने वाला है। इस मूर्ख बच्चे को नहीं मालूम ये गुब्बारा चार दिन भी नहीं चलने वाला, एक चार घंटे भी नहीं चलने वाला। अगर ठीक ठाक सुरक्षित भी रखा तो अगले दिन ऐसा ऐसे कूट जाएगा वो। तुरंत क्या फायदा है, इंद्रियों को क्या फायदा, यही देखते हैं। आत्मा को नित्य फायदा क्या है वो नहीं देख पाते हैं। और आज की दुनिया ऐसी है, आज की दुनिया ऐसी है, सब लोग इसी में लगे हुए हैं। अरे मृत्यु आने वाली है, बुढ़ापा आने वाली है, बीमारी आने वाली है। अब कोई भी क्यों ना हो, कितने भी विद्वान क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, क्या आप इन चीजों से बच सकते हो? बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा के लिए इन चीजों से छुटकारा पाना चाहता है और यही एकमात्र तरीका है भक्ति का। बोली ले केहो नाई लय कृष्ण नाम, निरवधि विद्या कुल करे ना व्याख्यान। किसी किसी को बोलते हैं, जाके प्रचार करते हैं पुस्तक, लो भाई कृष्ण का नाम लो। बोली ले केहो नाही लय कृष्ण नाम, बोलने के बाद भी कोई कृष्ण नाम नहीं लिया करते थे। निरवधि विद्या कुल करे ना व्याख्यान, और अपना कुछ सुनाते थे, अपना फिलोसफी कि आजकल साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा किया है, इसके बाद ना हम लोग चंद्रमा में जाएंगे परमानेंटली, वहां हनीमून करेंगे मून में जाके। तो इस तरह से स्वकार्य करेन सह भागवत गण, कृष्ण पूजा गंगा स्नान करेन कथन। तो बेचारे क्या कर सकते, बोल बोल के थक गए, कोई नहीं ले रहा है। तो कम से कम जितने भक्त लोग थे वो लोग एक जगह एकत्रित होकर स्वकार्य करेन सब भागवत गण, सब भक्त लोग आते थे और अपना काम करते थे। क्या करते थे? कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्णेर कथन, कृष्ण की पूजा गंगा स्नान, ऑफकोर्स गंगा स्नान यहां गंगा जी नहीं है, अपने अपने घर में स्नान करके आते हैं, और कृष्णेर कथन, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण कीर्तन। इस तरह से यही कार्य होता था। सबो मिली जगत तेरे करिए आशीर्वाद, शीघ्र कृष्ण चंद्र करो सवार प्रसाद। एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, हर एक भक्त लोग एकत्रित होकर एकमात्र प्रार्थना करते थे। उनको कोई चिंता नहीं थी संसार की, उनको चिंता थी कि पूरी दुनिया का क्या हो रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं ये लोग। उनका एक ही प्रार्थना हुआ करता था कि प्रभु, तीव्र तीव्र इच्छा से प्रार्थना करते थे कि कृपया आपकी कृपा ये सब बद्ध जीवों पर इस संसार में हो जाए। देखिए हम जो भी करते हैं इच्छा के ऊपर निर्भर है। हम यहां आज बैठे हैं क्योंकि या हमारी इच्छा थी या हमारे कोई मित्र की इच्छा थी, इसीलिए हम लोग आए इधर। किसी की इच्छा थी कि आप यहां आए, इसीलिए आप यहां आए हो। किसी की तीव्र इच्छा थी इसीलिए आप यहां हो। किसी की तीव्र इच्छा है इसीलिए कहीं और है वो। सब इच्छा के ऊपर निर्भर है। जहां इच्छा होगा वहां उस जगह पे हमारे मानसिक शक्ति, हमारे शारीरिक शक्ति, हमारे आर्थिक शक्ति हम डालेंगे। जहां इच्छा है वहां अपनी शक्ति डालेंगे, और जहां शक्ति डालेंगे वहां फल मिलेगा हमको। मनुष्य जीवन कुछ क्षण का है, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मतलब थोड़ी शक्ति है, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, कहां डालने वाले हो आप, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। भगवान इच्छा देखते हैं, लोगों की इच्छा है भोग करने की, और वैष्णवों की इच्छा है कि सबका उद्धार हो। तो भगवान सारे दूसरों की इच्छा लेते हैं और एक तराजू के एक पलड़े में डालते हैं, और सारे वैष्णवों की इच्छा लेते हैं तराजू पर डालते हैं और देखते हैं, फिर इनको इच्छा पूर्ण करेंगे, इनकी इच्छा नहीं। पर अगर वैष्णव की इच्छा तीव्र हो, वो नीचे आ जाए, तो भगवान जरूर सबकी उसकी इनकी इच्छा सबके लिए पूर्ण करेंगे। आप बोलेंगे प्रभु जी वैष्णव तो बहुत कम है इस संसार में, दूसरे लोग तो बहुत ज्यादा है, भौतिकवादी तो बहुत ज्यादा है, वैष्णव बहुत कम है। नहीं, इच्छाओं का वजन बढ़ता है शुद्धता से और निस्वार्थता से। जिस हद तक वो इच्छा शुद्ध है और निस्वार्थ है, वो इच्छा इतना भले इतना ही कम हो क्वांटिटी, पर क्वालिटी अच्छा है तो बोझा हो जाता है, वो बोझा बढ़ जाता है तो नीचे आ जाता है। भगवान बोलते हैं ओके, हम देखेंगे आगे। एक व्यक्ति की इच्छा से भगवान अवतरित हुए, वो थे अद्वैत आचार्य। एक व्यक्ति की इच्छा से, तो इस तरह से से नवद्वीपे वसे वैष्णव अग्रगण्य अद्वैत आचार्य नाम सर्वलोक धन्य। उसी नवद्वीप में एक महान वैष्णव अग्रगण्य, जो सबके लीडर थे उस समय, सारे वैष्णव सारे ब्राह्मण पूरे नवद्वीपवादी उनको मानते थे। किस चीजों में? ज्ञान में, थोड़ा ज्ञान भक्ति और वैराग्य में सबके वो नेता थे, उनसे बढ़कर कोई नहीं था। कृष्ण भक्ति बाखानेरा यहेरा शंकर, मतलब शास्त्र को लेते थे और शुद्ध कृष्ण भक्ति का व्याख्यान दिया करते थे। कोई भी शास्त्र उनको दो, उसका निचोड़ निकालकर उस असर में वो बताते थे। वो इस तरह से तुलसी मंजरी सहित गंगा जले निरवधि से ही कृष्ण महाकुतूहले। शास्त्र में उन्होंने एक श्लोक देखा और उस श्लोक में ऐसा था, तुलसी दल और गंगा जल लेकर अगर भगवान को अर्पण कर एक व्यक्ति जो भी इच्छा करता है, निश्चित रूप से उसकी इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान उसकी इच्छा से बिक जाते हैं वो तुलसी दल और गंगा जल से। वो श्लोक बहुत सुंदर है कि तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणते स्वयं आत्मान। भगवान बिक जाते हैं ऐसे व्यक्ति के। भक्तेभ्यो भक्त वत्सल, भगवान भक्त वत्सल है, इतना ऋणी हो जाते हैं कि उसकी जो भी इच्छा है पूर्ण करते हैं। तो हुंकार करो ये कृष्णा अवशेषे तेजे ये ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठे ते बाजे। इतने जोर से उन्होंने शालिग्राम लिया विष्णु का स्वरूप, वहां तुलसी दल और गंगा जल, और जोर जोर से हुंकार किए। ऐसा हुंकार कि तीनों लोकों को भेद कर, ब्रह्मांड की जो सीमा है उसको भेद कर, वैकुंठ पहुंचकर अपने आसन पर लेटे हुए भगवान के कानों में पहुंचा, प्रभु जल्दी आओ, आपकी यहां जरूरी है। हमारे एक सन्यासी हैं देवामृत स्वामी, उन्होंने बताया, जब मैं किसी ने पूछा महाराज कैसे आप अपना सन्यास मेंटेन किए, पाश्चात्य देश में जाते हैं, कितनी माया है वहां, बोले जब भी मैं ऐसा कुछ होता है, ऐसा देखता हूं दृष्टि जो मेरे को भ्रमित करता है, तो मैं आंखें बंद करके जितने जोर से हो सके उतने जोर से चिल्लाता हूं नित्य आनंद। फिर समझाए, ऑफकोर्स ये वॉल्यूम मतलब मुंह से नहीं, हृदय से जोर से, नहीं तो प्लेन में बैठा होगा जोर से चिल्लाए तो बगल वाला खिड़की से बाहर चला जाएगा। तो बोले ऐसा नहीं, हृदय से बड़ी तीव्रता से मैं चिल्लाता हूं नित्यानंद राम के प्रति, और एकाएक मुझे पता नहीं कहां से इतनी शक्ति आती है, ठीक ठाक चलता है मेरा गाड़ी। तो इस तरह से तीव्रता, जब ये हुंकार भेद कर विष्णु को सुना, क्यों? क्योंकि एक्चुअली भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, पर हमारे काम और क्रोध के हुंकार इतने जोर हैं कि सुनाई नहीं देता है दूसरे आवाज। समझ लीजिए कोई वो दरवाजे के पास बैठा हुआ है 50 फुट दूर और धीरे धीरे बोल रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और 6 लोग खड़े हुए हैं यहां और जोर जोर से चिल्ला रहे मेरे कान में कुछ और ही बात, तो आपको लगेगा मैं सुन सकता हूं वो? मैं सुन नहीं सकता क्योंकि 6 लोग चिल्ला रहे इधर ही मेरे कान के पास। तो इस तरह से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की आवाज इतनी जोर जोर है तो बेचारे भगवान कैसे सुनेंगे वो आवाज। ये आवाज को कम करो और वो आवाज को बढ़ाओ, फिर देखो सुनाई देगा। दूसरे आवाज कम होना है और ये आवाज बढ़ना है, यानी इस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तीव्रता बढ़नी चाहिए और दूसरी इस संसार में रहकर परमानेंटली भोग करने की इच्छा कम होनी चाहिए, तब भगवान आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और निश्चित रूप से उसका उत्तर देंगे। तो यह हुंकार अद्वैताचार्य ने किया, जे पे मेरो हुंकार और सुनिया कृष्णनाथ भक्ति वशे आपने ये कोयला साक्षात, और उनके हुंकार के कारण चैतन्य महाप्रभु ये इस संसार में अवतरित हुए। हाँ, फिर भी वो देख रहे थे, वो भी देख रहे थे चारों ओर क्या परिस्थिति चल रही है। तो कहते हैं स्वभावे अद्वैत बड़ा कारुण्य हृदय जीवेर उद्धार चिंते होइया सदय, जीव का उद्धार के बारे में सोचते हुए तब उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, बोले मोर प्रभु आसी यदि होय अवतार तबे होय ए सकल जीवेर उद्धार, अगर मेरे प्रभु यहां अवतरित होंगे तो निश्चित रूप से ये सारे जीवों का उद्धार होगा। तबे तो अद्वैत सिंह अमार बड़ाए वैकुंठ वल्लभ यदि देखा ना हेराए, मेरा नाम अद्वैत सिंह तब इसको परिपूर्ण होगा जब मैं वैकुंठ के नाथ को उतारूंगा यहां और सबको दिखने दर्शन कराऊंगा उनका। अब बोलेंगे 500 साल पहले हुआ था, 30 साल पहले भी ये हुआ था, 30 नहीं 40 साल पहले एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जब भारत छोड़कर अपनी गुरु की आज्ञा के अनुसार पाश्चात्य देश की ओर ये जलदूत नाम के जहाज में वो जा रहे थे, उस समय कहे भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। मेरा नाम तो आपने भक्ति वेदांत दे दिया प्रभु, वेदों का अंत है भक्ति, भक्ति वेदांत नाम तो बड़ा बड़ा दे दिया, अब इस नाम को सार्थक करो। मेरे में शक्ति नहीं है, नाचाओ नाचाओ प्रभु, आप नचाओ जिस तरह से चाहते हो, पर आपकी कृपा इन बद्ध जीवों पर हो जो पूर्ण रूप से तमो और रजोगुण में तमा रजोस्तमो एरा सबाय आछन्न, कृष्ण नाम होते नाइते प्रसन्न, ये रजो तमोगुण में फंसे हुए हैं। तो ये 500 साल पहले की बात नहीं है, ये 40 साल पहले की बात है और आज भी ये लागू ये तत्व। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, अगर हमारी इच्छा होगी खास करके आज के दिन, और अगर सारे भक्त लोग भगवान के गुणगान करने हेतु और अपने हृदय को शुद्ध करने हेतु और पूरे संसार का उद्धार करने हेतु अगर साथ में आकर हरिनाम संकीर्तन हृदय से श्रद्धा पूर्वक उत्साह पूर्वक तीव्रता के साथ अगर करेंगे, निश्चित है कि यह संख्या बढ़ेगी, वैष्णवों की संख्या बढ़ेगी और पूरे ब्रह्मांड में, न केवल सिर्फ कोल्हापुर में या महाराष्ट्र में या भारत में या इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह कृपा मिलेगी। हमारी इच्छा दिखाना है भगवान को। भक्त लोग उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, अपने जरूरतों को कम करने लगे, क्योंकि उनको खाने में भी इच्छा नहीं था। जब देख रहे थे कि इतने लोग तड़प रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, कोई कहने जाते तो सुनता नहीं है। इसको कहते हैं दया। जब ऐसी दया हृदय में आएगी तो निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना भगवान सुनेंगे और अवतरित होंगे, हमारे बीच अवतरित होंगे। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में अवतरित होंगे और हमको और सबको उनकी कृपा प्रदान करेंगे। यही आज के इस दिन का महत्व है। अद्वैताचार्य ने प्रण लिया, नहीं तो मेरा नाम अद्वैत नहीं। उस तरह से बड़ी तीव्रता के साथ सब भक्तगण एकत्रित होकर कीर्तन करते, प्रार्थना करते, और ये प्रार्थना सुनने के बाद बहुत सुंदर से वर्णन है। समय की पाबंदी, ज्यादा नहीं जा सकते, नहीं तो ये और 2-3 घंटे आराम से चर्चा कर सकते हैं। वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत सुंदर से मधुर बंगाली में, सरल भाषाओं में बहुत ही मधुर तरीके से वर्णन किया है कि किस प्रकार ये सब करने के बाद इसके फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हुआ। देखिए भगवान अपने अवतार हेतु को कैसे पूर्ण करते हैं। चंद्र ग्रहण कराया भगवान ने, चंद्र ग्रहण हुआ, पूरे नवद्वीप के लाखों लाखों लोग ग्रहण के समय, ऐसा नियम है, सब लोग गंगा स्नान करते हैं। जब तक ग्रहण है तब तक गंगा में स्नान करते रहते, गंगा में बैठे रहते और हरि का नाम लेते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पूरे नवद्वीप गंगा में स्नान कर रही थी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भक्तों को लग रहा था कि यह ग्रहण हमेशा बने रहे, हटे ही नहीं ये ग्रहण। यहां तक कि यवन ब्लेच्छ लोग जो कभी हरि का नाम ले लेते, वो भी इन लोगों को हंसी मजाक में, ओहो देखो सब गंगा में हरि बोल और वो भी हरि बोल कर रहे थे। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हरि बोल नहीं कर रहा था। देवतागण बहुत प्रसन्न हो गए और सज धज कर नवद्वीप में उतर के आए, क्योंकि मालूम था ये समय है जब कलियुग के युगावतार संकीर्तन प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होंगे। और इस तरह से जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी, उनके माता और पिता, उनके घर में इस समय चंद्रोदय, इसी समय अप्रोक्सीमेटली श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, युगावतार श्री गौरचंद्र की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। जब यह खबर मिली देवताओं को, सबके सब आ गए चंद्र ग्रहण के नाम से। वो लोग भी गंगा स्नान कर रहे थे, हरि हरि कर रहे थे, किसी को पता नहीं लगा कौन है ये। सबके सब सची और जगन्नाथ मिश्रा के घर में आकर दर्शन कर रहे थे इस बच्चे की। उसका वर्णन है जब गर्भ में थे तो किस प्रकार से देवतागण आके, ब्रह्मा आदि देवतागण आके स्तुति किए सची के गर्भ में श्री चैतन्य महाप्रभु को, और आज के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। तो यह कथा हमने सुना, हमारे लिए क्या सीखना है। एक हमें यह जानना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार अवतरित हुए। वैष्णवों की तीव्र इच्छा, उसके द्वारा वो यहां प्रकट हुए। अगर हमें कृपा मिली है तो तो किसी वैष्णव की तीव्र इच्छा और प्रार्थना हुई है, प्रभुपाद जी की प्रार्थना थी तभी हम यहां हैं। जैसे आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद जी को पाश्चात्य देश में जब गए थे, सारे हिप्पी लोग, ये लोग बैठे हुए थे, उनको समझ में आया कि हमको तो ब्रज भक्ति दे रहे हैं ये लोग, हम जो भी ये कार्य कर रहे हैं राधा कृष्ण की सेवा वृंदावन में अर्पण हो रहा है। ये जब उनको समझ में आया, जो वेदों में गुह्य है, जो ब्रह्मा शिव आदि को भी उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी हमारे अंदर क्या योग्यता थी, क्या आप लोग इतने गुह्य ज्ञान, वेदों में भी गुह्य ज्ञान, वेदेश दुर्लभ मधुर्लभ आत्मभक्तो, ऐसा ज्ञान हमको ऐसे आप बांट रहे हो। तो प्रभुपाद ने कहा तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, मैंने तुम्हारी योग्यता बनाई। और उनकी योग्यता क्या थी? प्रभुपाद जी की तपस्या। उनकी तपस्या नहीं होती, ये संग, ये ज्ञान, ये पुस्तक, ये सेवा जो इस दुनिया की नहीं है, ये लगता है, लगता मामूली चीज है कि हम लोग कोल्हापुर में बैठे हुए हैं और कुछ चर्चा हो रहा है, पर एक्चुअली ये आध्यात्मिक संसार का सेवा चल रहा है। अगर शास्त्र की दृष्टि से आप देखोगे तब समझ पाएंगे। तो कृतज्ञता पूर्वक हमें कम से कम जो इतनी तपस्या से दिया हुआ चीज है, ऐसा अनोखा उपहार, उसको स्वीकार करना है कृतज्ञता पूर्वक। स्वीकार करने के बाद पूरी प्रयास के साथ, प्रामाणिकता के साथ उसको उतारना है, उसका फायदा लेना है। और फायदा लेने के बाद परंपरागत, प्रभुपाद ने एक बार कहा, माय गुरु महाराज पुश्ड मी एंड देयर फॉर आई एम पुशिंग यू, दिस इज अ मूवमेंट ऑफ पुशिंग, पुश पुश पुश, धक्का मारो। मेरे गुरुजी ने मेरे को धक्का मारा अपनी आज्ञा के बल से, और उसके लिए मैं पाश्चात्य देश में गया, पूरे विश्वभर में प्रचार किया, और मैं तुम लोगों को अपनी आज्ञा के बल धक्का, क्योंकि मैं हम कोई नहीं धक्का मार रहा है, वो पीछे से धक्का मार रहे, वो महाप्रभु, उन्होंने कहा है जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा है गुरु हो या तारो ही देश। जिसको भी देखोगे कृष्ण का उपदेश करो और मेरे आज्ञा पे गुरु बनकर इस देश का उद्धार करो। क्या करे, इंजन ऑलरेडी चला है, हमारा हर डब्बा चलते ही रहेगा ऐसा, तो इंजन वो है, धक्का मार दिए, अब ये चलता रहना है गाड़ी, हम इसको लें, इसको उतारे और दूसरों को बांटे। तब आज का दिन एक मामूली दिन न रहकर हमारे जीवन का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डे ऑफ अवर लाइफ, दिस कैन बी अनदर ऑर्डिनरी डे और दिस कैन बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट डे इन अवर लाइफ, हमारे ऊपर निर्भर है। भगवान ने करोड़ों का चेक दे दिया है, उसको एनकैश करके, इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू कर सकते हो, या उसमें कुरमुरा बांध के खा के उसको कचरे में डाल सकते हो, पेपर का टुकड़ा है वो बेसिकली। इसी तरह से ये हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अगर इसको मामूली शब्द तरंग समझकर आज कीर्तन किया और चले गए, जैसे हम लोग चप्पल पहनते उसके बाद ऐसे इसको भी छोड़कर, हरिनाम को भी छोड़कर चले गए, तो वो करोड़ों के चेक को हमने मूंगफली का खाया, उसमें दाना, और उसको कचरे में डाल के चले गए, ऐसा हो जाएगा मनुष्य जीवन। पर अगर ये तथाकथित मामूली तरंग लगने वाले गोलोकेर और प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, दिव्य धाम का ये प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति, इसके अंदर सारी शक्ति भगवान ने डाल के दे दी है हमारे जीवन सुधारने के लिए, पूरे विश्व के जीवन को सुधारने के लिए, लोगों के जीवन को सुधारने के लिए, इतने विश्वास के साथ अगर हरिनाम संकीर्तन करेंगे तब हमारा आज का दिन जो है इसका पूरा फायदा हम ले सकते हैं। हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है, ये सब करने की शक्ति हमारी नहीं है। और इसीलिए महाप्रभु ने बताया है नियमित रूप से श्रद्धालु भक्तों के संग में आकर भगवान को प्रार्थना किया करो। जो हम अभी करने वाले हैं, आप सबसे निवेदन है, अभी गौर आरती होगी, ये आरती जो है पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण आरती है। एक्चुअली नए साल है और आज श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिवस है, अभी अभी जन्म लिए हैं, भोग भोग लग गया है, तैयार है अभी कृपा दृष्टि डालने के लिए। तो ये कीर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है, खास कीर्तन पूरे साल का, ये गौर आरती खास गौर आरती है। तो हम आप सबसे निवेदन है कि कृपया प्रार्थना कीजिए, आज जो भी प्रार्थना करेंगे तीव्रता से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है पूरे नशे में है, नशे से मनोमदोन्नत है, भंडार को फोड़ दिए वो कृष्ण प्रेम का, आस्वादन किए हैं उस नशे में है, और उस नशे में पात्र अपात्र देखे ना देखे, स्थान स्थान, पात्र नहीं देख रहे हैं, स्थान नहीं देख रहे हैं, जो सामने खड़ा है सबको देने के लिए तैयार है। क्या हम लेने के लिए तैयार हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो अभी हम कीर्तन करेंगे, सब लोग कृपया भाग लीजिए, और तत्पश्चात भगवान के कृपा का जो प्रसाद है वो प्राप्त कीजिए, और बाद में पूर्ण प्रसाद जो आपके लिए राह देख रहा है उसको भी स्वीकार करके जाइएगा। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।